नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दर्द का रिश्ता, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, दर्द का रिश्ता। सुबह 6:30 बजे का मुहूर्त था। इला को तो विश्वास भी नहीं था कि बच्चे इतनी जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि इस मुहूर्त को पकड़ने के लिए कम से कम 2 घंटे पहले उठना जरूरी था, तब तो सारे काम निपट पाते। सबसे पहले कुल देवता की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उसके लिए पूरे परिवार का स्नान करना आवश्यक था। बेचारे बच्चों को तो 2 बार नहाना पड़ा, एक बार मुंडन से पहले, फिर एक बार मुंडन के बाद। उनका मन हुआ कि मुंडन के लिए मना ही कर दे, पर सास का डर था वे कभी नहीं मानेंगी। अभी 8-10 दिन पहले उनसे डरते डरते कहा था, मम्मी जी आजकल मुंडन का रिवाज ही नहीं रहा, मेरे भाई ने भी। अरे उतने बड़े लड़के के कोई बाल उतारता है, मम्मी जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। अब तो ये है कि जब मन आया जनेऊ डाल लो, पर असली उम्र तो यही है, उन्होंने दोनों पोतों को अंक में भरते हुए कहा। पर बाल उतार कर पता नहीं कैसे लगेंगे, सिर्फ कैंची भर छुआने से नहीं चलेगा। अरे तुम देखना कितने सुंदर लगेंगे, सास ने उसे आश्वस्त किया। और सचमुच दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे, छोटी सी धोती, छोटा सा उत्तरीय, गले में जनेऊ, हाथ में दंड, सिर पर लहराती छोटी सी चोटी और ताजे घुटे सिर पर अच्छत रोली से बना सातिया। उसे लगा अपने छोनों को अपनी ही नज़र न लग जाए। उसकी सास किसी को बड़े गर्व से बता रही थी, हमारी 3 पीढ़ियों में किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई है, सबके 2-2 बेटे ही हैं। मेरी सास के 2 बेटे थे, हम देरानी जेठानी के 2-2 बेटे हैं, मेरी बहुओं के भी 2-2 बेटे हैं। लगे हाथ अजय के बच्चों को भी जनेऊ पहना देती ना, किसी ने कहा। कहा था भाई, उसी के लिए साल भर से रुके हुए थे, पर उसे छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करें। इधर से बच्चे बड़े हुए जा रहे हैं, हमने कहा इन्हें ही निपटा दो, जब उन बच्चों का संयोग बनेगा तो उनकी भी कर देंगे। वैसे छुट्टी का तो बहाना है, अजय ने साफ कह दिया था कि मैं इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता, इस तरह पैसा फूकने से तो अच्छा है बैंक में रख दो, बच्चों के काम तो आए। इला ने देवर को समझाने की कोशिश की थी, पर बात को उपयोगितावाद से जोड़कर मत देखो, संस्कार भी महत्वपूर्ण होते हैं, मम्मी पापा जी की भावना का भी प्रश्न है। पर एक बात है, मेरे या वनीता के माँ बाप इस घर में किस बहाने से आएंगे, बच्चों की शादी में तो अभी बहुत देर है, उसमें हमारा रोल होगा भी नहीं, यह कौन जानता है। भाभी आप पता नहीं किस युग में जी रही हैं, आपकी या विनीता के मम्मी पापा को हमारे आने के लिए बहाना क्यों चाहिए। आपके यहाँ की बात मैं नहीं जानता, पर विनीता के मम्मी पापा तो हर 2 साल में मेरे यहाँ आते ही रहते हैं। पापा जी ने मनाने की चेष्टा की थी, तुम खर्च को लेकर परेशान मत हो, यहाँ तुम्हें एक पाई भी खर्च करने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं आने जाने में ही तुम्हारा काफ़ी पैसा उठ जाता है। खर्च की बात नहीं पापा, दरअसल मेरा इन सब बातों में विश्वास ही नहीं है, और यहाँ आकर तो यह सब बहुत ही बेमानी लगता है, तो गेट टुगेदर समझ कर ही आ जा, उसने साफ मना कर दिया। कहा और वैसे ठीक ही कहा है, पापा इस समय आऊँगा तो सब लोग काँव काँव करेंगे, दलीलें देता फिरूंगा तो सब कहेंगे कि विदेश जाकर फिरंगी बन गया है, धर्म कर्म सब भूल गया है, इसलिए फिर कभी आऊँगा, अभी इस मौके पर नहीं। इस मौके पर आते तो अच्छा लगता, खैर तुम्हारी मर्जी, पापा जी ने उत्साह भर कर कहा था और फोन रख दिया। मम्मी जी भी बहुत उदास हो गई थी, पापा जी ने समझाया भी था, लड़के एक बार बाहर निकल जाते हैं तो अपने नहीं रहते, कभी कभार फोन कर लेता है, 1-2 साल में चक्कर लगा जाता है, इसी में गनीमत समझो। फिर किसी भी माँ का मन क्या ऐसी बातों से बहलता है, इला उनकी व्यथा खूब समझ रही थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था, सोने बैठने तक को जगह नहीं थी, पर उस एक मेहमान के बिना सब सूना लग रहा था। अपने 4-4 पोतों को अगल बगल बिठा कर मात्र भोज करवाने का उनका सपना धरा रह गया। संजय अलग उड़ रहे थे, जो नहीं आया उसके लिए बिस्सू रही है, जो यहाँ खट रहा है उसकी कोई कीमत नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसी को तो कहते हैं, हर कोई उसी को पूछ रहा है जैसे हम कुछ है ही नहीं। इला की एक दूर की बुआ सास दूसरे के कान में फुसफुसा रही थी। अजय तो खैर परदेश में है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी तभी नहीं आ पाया। पर बड़े भैया तो शहर में है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो बुलाया होता। दो दो बेटों का दम भर रही है, ना इनकी सास के बेटे साथ रहे, ना इनके बेटे इनके साथ रहे, अगली पीढ़ी के लिए तो सोचना ही बेकार है। उनकी बातें सुनकर इला मन ही मन कांप गई, उसकी आंखों में बेवजह आंसू भर आए। इला ने बहुत चाहा था कि इस शुभ मौके पर बड़े पापा जी और मम्मी भी आए। उसने दबी जबान में संजय से कहा भी था, पर उसने एकदम घोड़क दिया था, खबरदार मम्मी के सामने भूल कर भी यह बात छेड़ना, उनका दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, और उन लोगों के लिए तुम क्यों मरी जा रही हो, संबंध एक बार टूट गए तो टूट गए बस। उन लोगों को ना मेरी शादी में बुलाया गया था, ना अजय की शादी में, फिर अब क्या नई बात हो गई। वह अपने पति से कैसे कहती कि उसे अपने बच्चों के लिए उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए, पता नहीं क्यों उन लोगों के लिए उसके मन में आगाध श्रद्धा है। बड़ी मम्मी को तो एक बार देखते ही वो उसकी मुरीद हो गई थी। इला जानती है कि पापा जी भी उसी की तरह मन में छटपटा रहे होंगे, पर बेचारे मजबूर हैं, अपने मन की बात कह दे तो अभी मेहमानों के सामने तमाशा खड़ा हो जाएगा। पापा जी ही ने तो उसे पहली बार उन लोगों से मिलवाया था। मम्मी जी अपने सत्संग मंडली के साथ 2 दिनों के लिए गिरिराज गई हुई थी। दोपहर में पापा जी को चाय देने गई तो बोले, बहू रानी घर में बोर हो रही हो ना, चलो तुम्हें यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर दिखा लो। मना करने का प्रश्न नहीं था, तैयार होकर सिमटी सुकड़ी वह उनकी बगल में जाकर बैठ गई। कुछ देर घूमने के बाद गाड़ी जहाँ आकर खड़ी हुई वह मंदिर तो कतई नहीं लग रहा था। फाटक के पार बजरी की एक संकरी सी घुमावदार सड़क थी। सड़क के छोर पर पुराना किंतु बड़ा सा बंगला नजर आ रहा था। वह अभी सोच ही रही थी कि पापा जी ने कहा, बेटे फाटक खोलो। उसने उतर कर आज्ञा का पालन किया। गाड़ी के प्रविष्ट होने पर उसने पुनः फाटक बंद किया। पापा जी तब तक उसके लिए रुके रहे। वह गाड़ी में पुनः जाकर बैठ गई और गाड़ी कुछ ही सेकंड में एक भव्य पोर्चो में जाकर खड़ी हो गई। बरामदे में बैठा एक बुढ़ा सा चौकीदार अदब से उठकर खड़ा हो गया। उसकी कुशल छेप पूछने के बाद पापा जी ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भाभी कहाँ हो। भीतर से एक भव्य आकृति निकली, दमकता गोरा रंग, चौड़े पाट वाले सीधे पल्ले की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ पर लाल सुर्ख चूड़ियाँ। पूरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पापा जी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, इला स्वयं ही उनके चरणों में झुक गई। उसे उठाकर अंक में भरते उन्होंने कहा, लाला ये कैसा मजाक है। मजाक कैसा, तुम्हारी बहू है, पैर पड़ने आई है। भैया कहाँ है। वे नहीं है, वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए, पर मैं पूछती हूँ ये कौन सा तरीका है, आने से पहले क्या एक फ़ोन नहीं कर सकते थे, अब बहू को मैं क्या खाली हाथ देखूंगी। इसे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए भाभी, फिर भी अगर तुम्हारा मन ना माने तो अपने खजाने में से कुछ उठाकर दे देना, वह धन हो जाएगी। भैया कहाँ हैं। अपने कमरे में, और कहाँ होंगे, किसी किताब में सिर डाले बैठे होंगे। फिर तीनों का काफिला उस कमरे की ओर चला। इला जब भी बड़ी मम्मी की ममता भरी बांह को घेरे में ही थी। कमरे में जाकर देखा, बड़े पापा जी सचमुच आराम कुर्सी में लेट कर पुस्तक पढ़ रहे थे, आहट होते ही उठ बैठे। इला ने देखा हूँ बहू उसके ससुर की आकृति थी। हाँ, रंग ज्यादा उजला था और बाल भी। ये श्रीमान जी आए हैं अपनी बहू को लेकर, मुंह दिखाई वसूल ने। तब तक इला ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए थे। वे आशीर्वाद देना भूल गए और अस्त व्यस्त होकर जेब टटोलने लगे। अब ये नाटक रहने भी दो, तुम्हारी जेब में से कभी कुछ निकला है, जो आज निकलेगा। ठहरो मैं ही कुछ करती हूँ। करीब 5-10 मिनट के बाद वे भीतर से लौटी। उनके हाथ में एक मखमली डिबिया थी। पति को पकड़ाते हुए बोली, लो ये बहू को दो। इसमें क्या है। कन खजूरा। तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब, तुम तो बस दे दो। उन्होंने दे दिया और इला ने बड़े संकोच के साथ उसे ग्रहण किया। पापा जी ने फौरन खोल कर देखा, झिलमिल करते जड़ाऊ झुमके थे। असली हैं, अपने सुनार से जचवा लेना। इला संकोच से गड़ गई, समझ में नहीं आ रहा था कि ये नोक झोंक असली है या नकली। तभी पापा जी बोले, पूरी तैयारी के साथ बैठी थी और इतनी देर से यूं ही नाटक किए जा रही थी, पापा जी की आवाज इस समय एकदम तरल थी। उन्होंने मिचड़ी घुले स्वर में कहा, तैयारी कैसे न करती? मुझे विश्वास था तुम बहू को लेकर एक दिन जरूर आओगे। थोड़ा सा मुंह जुठार कर वे लोग चलने लगे तो बड़ी मम्मी ने एक कांजीवरम साड़ी और खील मखानों से उसकी गोद भर दी। फिर ईला की ठोड़ी छूकर बोली, लाला बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। छांट कर लाया हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी होने लायक तो हो। अरे हमारे साथ कहाँ खड़ी होगी ये, उन्होंने उत्साह भर कर कहा। और कौन इन्हें हमारे साथ खड़ी होने देगा, उनके प्रत्येक शब्द से विषाद जैसा जल पड़ रहा था। लौटते हुए पापा जी ने कहा, बहू रानी इतना तो तुम समझ ही गई होगी कि यहाँ आने की बात किसी को नहीं बतानी है। जी, किसी को मतलब संजय को भी नहीं बताओगी? जी, उसके स्वर में आश्चर्य था। अपनी मम्मी का स्वर्ण कुमार है वो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जोड़े से नहीं भेजता। बहुत मन था मेरा कि तुम्हें इन दोनों का आशीर्वाद मिले, इसलिए ले आया। पापा जी ये चीज़ें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, संजय पूछे तो कह देना मैं कैसे आई है। इतना झूठ तो वह नहीं बोल सकती थी। हाँ, अपने भाई की शादी में उसने खूब ठार से ये दोनों चीज़ें पहनी और बताया कि हमारी बड़ी मम्मी जी ने दी है। उसके मन में कितने प्रश्न उठते थे पर संकोच के मारे कभी पूछ नहीं पाई। बाद के वर्षों में यही जाना कि उसकी सास शायद हीन बोधता से ग्रस्त है। जेठानी परम सुंदरी है, जेठ जी शहर के सबसे बड़े वकील हैं, उनके दोनों बेटे विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, दोनों बहुएं बहुत बड़े घरों से आई हैं, शायद इसलिए वे जेठानी को सहज भाव से नहीं ले पाती। एक ही शहर में रहने के कारण अक्सर ही उन लोगों से सामना हो जाता था। रिश्तेदार कॉमन थे, परिचित थे, दोनों घरों के एक ही रिश्तेदार थे, इसलिए शादी ब्याह में मुलाकात हो ही जाती थी। पहले पहल तो इला को बहुत संकोच होता, जिससे इतना स्नेह मिला उससे अपरिचय का नाटक कैसे करे। फिर उसने नाटक करना छोड़ दिया। मम्मी जी की नज़र बचाकर वह उन दोनों के चरण स्पर्श कराती थी। आशीर्वाद मिलता था तो मन तृप्त हो जाता था। बाद में तो शायद मम्मी जी को पता भी चल गया था पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, श्रवण कुमार से जरूर कहलाया था पर इला ने तपाक से जवाब दिया था, मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं ना, फिर मेरे संस्कार भी ऐसे नहीं कि बड़े बुजुर्गों को देखकर अनदेखा करूं और सिर्फ प्रणाम ही तो करती हूँ, बदले में आशीर्वाद ही तो मिलता है, फिर इतनी हाय तौबा क्यों। संजय अपना समूह लेकर रह गया था। सात्विक हुआ था तब भी पापा जी उसे चोरी छिपे बड़ी कोठी लेकर गए थे पर स्वास्थ्य के समय उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई। इन दिनों पापा मम्मी अजय के साथ US में थे, विनीता के यहाँ बच्चा होने वाला था। इला की शादी के कोई साल डेढ़ साल बाद ही अजय की शादी हुई थी। शादी के बाद वह करीब महीना भर घर में था पर विनीता को पापा जी कभी बड़ी कोठी लेकर नहीं गए। इला ने एक बार यह बात उठाई थी तो पापा जी बोले, बेटा आशीर्वाद का महत्व केवल संस्कारी व्यक्ति ही समझ सकता है, तुम्हें मैंने महीना भर परख लिया था, उसके बाद ही वहाँ लेकर गया था। तुम्हारी देवरानी तो लगता है जैसे अमेरिका में ही पैदा हुई है, उसे लेकर जाने का मन ही नहीं हुआ। इला को लगा कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट उसके लिए और क्या हो सकता है। मुख्य संस्कार तो 6:30 पर ही संपन्न हो गया था, उसके बाद मंत्र दीक्षा हवन आदि कार्यक्रम चलते रहे, साथ साथ मेहमानों का चाय नाश्ता भी चलता रहा। संजय वेदी पर बैठे थे इसलिए सारी भागदौड़ पापा जी ही कर रहे थे। बीच में थोड़ी फुर्सत मिली तो एक कोने में बैठकर वे थोड़ा सुस्ता लिए। 9 बजे से रिसेप्शन था, फिर तो बिजी होना ही था। इला ने इसी फुर्सत का फायदा उठाया, पास जाकर बोली, पापा जी आज मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। बोलो बेटा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने जो मांगा वो हमने ना दिया हो, आज आप मेरे बच्चों को बड़ी मम्मी का आशीर्वाद दिला दीजिए। वे क्षण भर उसे देखते रहे फिर बोले, यू आर आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल डियर, आज तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तुरंत हंगामा हो जाएगा, बच्चों को लेकर कहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका चेहरा इतना सा निकल गया। सॉरी बेटे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपा कर कहा, अपन कल वल चल लेंगे। बाद में उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, सब कुछ जानते बूझते वैसा प्रस्ताव करने की क्या जरूरत थी, खुद भी दुखी और उन्हें भी दुखी कर दिया। ठीक 9 बजे से लोग आने लगे, सुबह का वक्त था, इसलिए स्वल्पाहार का ही आयोजन था, पर वह सिर्फ कहने भर का ही स्वल्पाहार था। गुजराती, मराठी, पंजाबी, मद्रासी सारे प्रांतों का नाश्ता वहाँ उपलब्ध था। बच्चे अपनी ब्रह्मचारी वेशभूषा में स्टेज पर विराजमान थे और खूब खुश हो रहे थे। उपहारों का ढेर लग गया था, जिसे देखकर वे अधीर हो रहे थे। उसने बार बार आँख से बरजा ना होता तो तब तक वह आधे पैकेट खोल चुके होते, पर 12 बजते बजते वे लोग उब गए, एकदम निढाल हो ही गए। पापा जी की एक मुँह बोली, बहन बोली, भाभी बच्चे तो एकदम उनिंदे हो रहे हैं। उनिंदे नहीं होंगे, सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं, उस पर दो दो बार नहा भी चुके हैं। अरे तो इन्हें खाना वाना खिला कर सुला दो ना, आज उन्हें ये खाना थोड़े ही मिलेगा, आज तो वे फरियाली खाएंगे। हाय राम, तो क्या दिन भर उपासे रहेंगे? हाँ, शाम को गाजे बाजे के साथ मंदिर जाएंगे, वहाँ नए कपड़े पहनेंगे, फिर घर लौट कर खाना खाएंगे। शाम तक तो बेचारे हलकान हो जाएंगे। भाभी इन्हें मैं अपने घर ले जाती हूँ, खिला पिला कर सुला दूंगी, यहाँ हड़ बोड़ में वे सो नहीं पाएंगे, अच्छी नींद हो जाएगी तो शाम को फ्रेश लगेंगे, सब कुछ इंजॉय कर सकेंगे। आज वैसे किसी के घर जाते नहीं हैं। कमाल करती हो भाभी, क्या मेरा घर भी पराया हो गया? इला, बच्चों के खाने का सामान लेकर मेरे साथ चलो, उन्हें सुला कर फिर अपनी सास का हाथ बटाने आ जाना। इला ने सास की ओर देखा, वहाँ अस्वीकार साफ झलक रहा था, पर मुंह से वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उसने मौके का फायदा उठाया, विनर स्वर में बोली, मम्मी जी, बुआ जी ठीक कह रही हैं, बच्चे यहाँ सो नहीं पाएंगे और फिर पूरी शाम खिन खिन करेंगे, वैसे भी दोनों इतनी सारी चीज़ें सामने देख रहे हैं तो खाने की जिद कर रहे हैं, यहाँ से दूर रहेंगे तो जो दूंगी चुपचाप से खा लेंगे। गाड़ी में बैठते ही बुआ जी बोली, बाप रे, तेरी सास से पार पाना तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं तू कैसे निभाती है। इला चुप बनी रही, जानती है रिश्तेदारों से बात करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, कब कौन सी किस रूप में कहाँ पहुँच जाए पता थोड़ी होता है। बुआ जी के ड्राइंग रूम में पाँव देते ही वह आश्चर्य से ठगी रह गई। अपनी चीर परिचित मुस्कान के साथ बड़ी मम्मी स्वागत के लिए खड़ी थी, खुशी के आवेग में वह तो पाँव छूना ही भूल गई, एकदम जाकर लिपट गई। सच मम्मी जी, आज तो भगवान से और कुछ भी मांगती तो मिल जाता, सुबह से आपकी याद आ रही थी, चाहती थी आज मेरे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिले, और देखिए भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। चलो बच्चों, दादी को प्रणाम करो। पागल हुई हो, आज को इनसे प्रणाम करवाता है, आज तो प्रणाम हम इन्हें करेंगे। लो ब्रह्मचारी महाराज, अपनी झोली तो आगे करो, और उन्होंने मेवा मिष्ठान से दोनों की झोली भर दी। फिर उन्होंने पर्स में से लाल रंग की डिबिया निकाली, सोने के जनेऊ थे। वे सात्विक को पहनाने ही जा रही थी कि इला ने उनके हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, आप अब तक देती ही रही हैं और मैं आपकी दी हुई हर चीज़ को सिर माथे लेती रही हूँ, पर आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इस बार क्षमा कीजिए। पर क्यों, यह तो बच्चों का नेक है। नेक तो है, पर मैं इन्हें कभी पहना नहीं पाऊंगी, ना उनसे झूठ बुलवा पाऊंगी कि यह उनकी नानी ने दिया है। बच्चों को अभी से छल परपंच नहीं सिखाना चाहती, वह तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी घर जाकर मेरे बारे में बता नहीं देंगे। नहीं बताएंगे, आज सुबह से कोई दर्जन भर दादी लोगों को आशीर्वाद दे चुके हैं, काफ़ी कन्फ्यूज हैं। हाँ, अगर जताकर मना करूँगी तो ज़रूर बता देंगे। बुआ जी अब तक चुप बैठी थी, एकदम बोली, और बहुरानी, हम जो तुम्हें छल परपंच करके यहाँ लाए हैं उसका भी कुछ ख्याल है? मतलब इतनी देर से भगवान को यूं ही धन्यवाद दिए जा रही थी, जबकि इसके असली हकदार मेरे भैया हैं। आपका मतलब पापा जी से? और क्या, भगवान ऐसे लाड लड़ाने वाले ससुर सबको दे, मजाल है जो बहू की एक भी इच्छा अधूरी रह जाए। इला का मन बूझ सा गया, वह तो समझी थी कि मम्मी जी उसके प्यार के डोर में बंद कर आई हैं, पापा जी के लिए तो हृदय कृतज्ञता से भर उठा। फिर भी वह कसक तो बनी रही। धीरे से उसने कहा, आप इतनी तैयारी के साथ आई थी कि मुझे लगा। तैयारी तो पूरी थी, मुझे मालूम था कि तुम आशीर्वाद देने जरूर आओगी, पर यह नहीं पता था कि आशीर्वाद देने मुझे आना पड़ेगा, और वह भी आज ही। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, आपको, बुआ जी को। कष्ट तो अब होगा बहुरानी, छोटी भाभी को अगर पता चल गया ना तो उस घर का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा को बंद हो जाएगा। और मेरे लाडले देवर को कोर्ट मार्शल होगा सो अलग, उसकी कोई चिंता नहीं। वह हंस दी, पापा जी कोर्ट मार्शल की परवाह नहीं करते, करते होते तो मुझे लेकर आपके घर कभी नहीं आते, वे तो बस घर में शांति चाहते हैं, इसीलिए मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं। और तुम्हें अपने लिए डर नहीं लगता?
नहीं,
क्योंकि वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहती, मेरे सामने छोटा होना नहीं चाहती हैं, इसलिए जो कुछ कहना है वह अपने बेटे से कहलवाती हैं और मैं उससे निपट लूँगी। देखो भाभी, तुम्हारी बहू कैसी घुटी हुई है और तुम सोचती हो बड़ी सीधी है। उसी समय घड़ी ने टन से 1 बजने का संकेत किया। बड़ी मम्मी एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा ननद रानी अब चलती हूँ, नहीं तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे भाई बड़े भैया ठीक 1:30 बजे टेबल पर पहुँच जाते हैं। फिर दोनों बट्टू महाशकों को अंक में भरते हुए बोली, इला तुम्हारी ये राम लखन की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, शाम को इनकी नज़र जरूर उतार देना। नज़र तो इनकी दादी उतारेगी, पर मम्मी जी आप इन दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, कभी टूटे नहीं। रोजगार के लिए ये भले ही दुनिया के और छोर पर हों, पर मन से हमेशा पास रहें, ऐसा चाहे सालों साल एक दूसरे की शक्ल ना देखें पर सुख दुख सदा साथ रहें। वे सुखी हंसी हंस रही। आशीर्वाद मांगा भी तो किससे, भला मैं किस मुँह से ये आशीर्वाद दूंगी? आप ही दे सकती हैं, क्योंकि आप इस अलगाव की पीड़ा को समझती हैं, आप भी इस दर्द को उसी शिद्दत के साथ महसूस करती हैं जितना कि मैं, इसीलिए आपके आशीर्वाद में बल होगा तो वह जरूर फलेगा। दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखते उन्होंने कहा, मेरे आशीर्वाद में बल हो ना हो पर तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारे संस्कार में जरूर बल है, वे व्यर्थ नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।